ये आकाशवाणी है, अब आप सरफिरोजी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से दो दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे। वे आज शाम एकता नगर में 280 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न बुनियादी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य पर्यटन को बेहतर करना और क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देना है। श्री मोदी आरंभ 6.0 में 99 कॉमन फाउंडेशन कोर्स के अधिकारी प्रशिक्षुओं को भी संबोधित करेंगे। इस वर्ष के कार्यक्रम का विषय आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए रोडमैप है। 99 कॉमन फाउंडेशन कोर्स में भारत की 16 सिविल सेवाओं और भूटान की 3 सिविल सेवाओं के 653 अधिकारी प्रशिक्षु शामिल हैं। धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र की करीब 12,850 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में विस्तारित आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और यूविन पोर्टल का शुभारंभ भी शामिल है। ये विस्तारित योजना अब 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल कवरेज सुनिश्चित करती है। अयोध्या में आज होने वाले भव्य दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दीपावली के अवसर पर अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर हजारों दीयों से जगमगाएगा। नया विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए सरयू नदी के घाटों पर 28 लाख दीपों की व्यवस्था की गई है। मुख्य समारोह के लिए पूरे शहर को सजाया गया है। आपात स्थिति से निपटने के लिए घाटों पर 5 नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं। घाटों की लगातार सफाई की जा रही है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टीम के एक सलाहकार और विश्वविद्यालय की गिनती समिति के सदस्यों के नेतृत्व में 30 लोगों की एक टीम पहले ही 55 घाटों पर सजाए गए दीपकों की गिनती कर चुकी है। राम पथ पर निकलने वाली शोभा यात्रा में रामायण के 7 अध्यायों पर आधारित 18 झांकियां शामिल होंगी। ये झांकियां भगवान राम के पूरे जीवन काल को दर्शाएंगी। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देने के लिए देश विदेश से कलाकार बुलाए गए हैं। दीपोत्सव समारोह में 1100 से अधिक पुजारी भव्य सरयू आरती का हिस्सा होंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस सप्ताह सऊदी अरब की यात्रा पर आज शाम रियाद पहुंच गए। उनकी ये यात्रा भारत और सऊदी अरब के बीच गहरी साझेदारी में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री गोयल कल उच्च स्तरीय बैठकों और कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री गोयल भारतीय दूतावास में एक जिला एक उत्पाद दीवार का भी उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र में एक ही चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव और झारखंड में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी। दोनों राज्यों में नामांकन दाखिल करने का कल आखिरी दिन था। झारखंड में उम्मीदवार 1 नवंबर तक और महाराष्ट्र में 4 नवंबर तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। झारखंड में इस चरण में 38 सीटों के लिए जबकि महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों राज्यों में मतगणना 23 नवंबर को होगी। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अनियमितताओं के बारे में कांग्रेस के सभी आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखे पत्र में आयोग ने कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों को आगाह किया है कि वे चुनाव और मतगणना जैसे संवेदनशील मामलों में बेतुके और सनसनीखेज आरोप न लगाएं। आयोग ने कहा है कि इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना आरोपों से लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल पंप डीलरों को दे डीलर कमीशन में वृद्धि की घोषणा की है। साथ ही पेट्रोल और डीजल डिपो से दूर दराज के स्थानों पर स्थित उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए अंतर्राज्य माल ढुलाई को तर्कसंगत बनाने के निर्णय की भी घोषणा की गई है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ओएमसी के इस निर्णय का स्वागत किया है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ तूफान की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार केरल, माहे, लक्षद्वीप, तटीय और दक्षिण कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी अगले 3-4 दिनों के दौरान हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।